हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 15। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मत संस्थाम अधिगच्छति, बहुत अद्भुत। तो भगवान यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, और वो बात बोल रहे हैं निरंतर, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ समय किया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ समय किया फिर छोड़ दिया। इस प्रकार से प्रगति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि चेतना को हम कभी अंतर्मुखी करें, हम कभी बहिर्मुखी करें, फिर अंतर्मुखी करें और बहिर्मुखी करें, तो उससे फिर प्रगति का अनुभव हमें कम होगा। इसीलिए निरंतर मतलब रोज अभ्यास करना चाहिए, हमें रोज जप करना चाहिए, रोज भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। रोज बहुत अधिक महत्व देता है। तात्पर्य, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि जब हम भक्ति करते हैं तो जगत से वैराग्य क्यों होने लगता है? क्योंकि जगत से वैराग्य होना ही चाहिए। जगत में आसक्ति ये बीमारी का लक्षण है। जगत दुख का घर है, जगत अशाश्वत है और हम लोग शाश्वत हैं, हम लोग आनंदमय हैं। तो ये स्थान हमारे रहने के लिए नहीं है। जो लोग हमारे भक्ति करने से उद्विग्न हो रहे हैं वो लोग अज्ञान में हैं, इस कारण से वो समझ नहीं पाते कि ये जगत बिल्कुल भी रहने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन हाँ, तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये ज्ञान हमारे हृदय में होने लगता है और नेचुरली स्वभाव से हम इस जगत से विरक्त हो जाते हैं। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक है, वे भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। यानी कि कोई हवा में उड़ जाना, अनिमा लकिमा इत्यादि जो अष्ट सिद्धियां होती हैं, इसकी प्राप्ति ये योग का उद्देश्य नहीं है, अपितु योग का उद्देश्य है भगवान के धाम को जाना, अपने इंद्रियों को संयम करके भगवान में लगाना, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना और हम भगवान के धाम चले जाएं। इसी प्रकार से भक्ति करने से भी बहुत सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, होती ही हैं, लेकिन उद्देश्य भक्ति का सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है और भगवान के धाम की प्राप्ति करना है। ये क्लियर होना चाहिए। भक्त लोगों को भी हम देखते हैं कि वो लोग योगाभ्यास करते हैं अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, 10-15 मिनट जो भी करते हैं, तो क्या वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? क्या वो गलत हैं? क्या वो योगी नहीं है? नहीं। हमने इससे पहले भी चर्चा किया युक्त वैराग्य के ऊपर। भक्त लोग अपने शरीर से आसक्त नहीं है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए से आसक्त हैं, इसलिए कृष्ण की सेवा वो ठीक से कर सकें, इसके लिए अगर कुछ योगाभ्यास करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसका उद्देश्य लेकिन ये होना चाहिए कि मैं भोग करने के लिए नहीं अपितु कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूं। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवद गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में। पहली बात तो ये है कि भगवान की सृष्टि में कहीं भी कोई शून्यता नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं हो जहां कुछ नहीं हो। पहली बात तो अगर कोई स्थान है तो वो स्थान है, मतलब वहां कोई शून्यता नहीं है। तो कुछ लोगों के मन में ये भावना रहती है कि निर्वाण हो जाएगा तो हम शून्य में प्रवेश कर जाएंगे। अगर शून्य है तो उसमें प्रवेश कैसे करोगे? तो ये सोचना चाहिए, ये मनोधर्म है, मनोकल्पना है। पूरी सृष्टि में हर जगह कुछ ना कुछ है, और क्योंकि ये भगवान के द्वारा इसकी संरचना होती है। पहली बात तो ये। दूसरा, भगवान का धाम वो क्या है? भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उस उन भगवान के धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है न चंद्रमा प्रकाशित करता है, और जब एक व्यक्ति एक बार वहां पहुंच जाता है तो उसको वापस इस जगत में कभी नहीं आना पड़ता। ये बातें बार बार सुनने की आवश्यकता है, भले ही आपको पता हो, बार बार सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि सुनने के बावजूद भी हमारी आसक्ति इस जगत में बनी रहती है। थोड़ी थोड़े समय के लिए हम इस जो दुखमय संसार में हैं। और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जैसे कि सूर्य पूरे जगत को आकाश, पूरे भौतिक आकाश में सूर्य सबको रोशनी देता है, तो कोई कहे कि सूर्य के अंदर कौन रोशनी देता है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य तेज से पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है, और बल्कि अपितु उनका ही तेज सूर्य के तेज के रूप में प्रकट हो रहा है। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, भगवान बताते हैं कि सूर्य सूर्य और चंद्र की प्रभा वो भी उनसे ही आ रही है। तो अच्छा, एक और बात है, हाँ, तो यानी भगवत धाम में सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं होती है, बिजली के बिल की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ भगवत धाम सर्वत्र, यानी हम लोग भौतिक जगत में हैं तो भी भगवत धाम में ही हैं। जैसे एक जेल भारत में ही होती है, जो कोई मान लीजिए भरतपुर की जेल है या कोई भी जेल है, वो भारत में ही है, लेकिन जेल के अंदर जो सुविधाएं हैं वो बाहर रहने वाले व्यक्तियों की सुविधाओं से बहुत न्यूनतम होती हैं, बिल्कुल बंधन होता है। उसी प्रकार से भौतिक जगत भी आध्यात्मिक आकाश में ही स्थित है, लेकिन इसमें इसमें वो लोग वो आत्माएं हैं जिनकी चेतना बहिर्मुख है, और इस कारण से उनको दुख प्राप्त होता है। अगर हमारी चेतना कृष्णोन्मुख हो जाए तो इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर सकता है, लेकिन फिर भी ये स्थान हमारे रहने के लिए नहीं है, ये स्थान बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, अपितु भगवान के धाम जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है, और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। अंततो गत्वा मतलब उसको सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपने परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। कोई भी कृष्ण या विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी हम पाते हैं, तमेव विद्युत्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, एक कि भगवान कृष्ण गोलोक में रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से अपनी लीलाओं को संपादित करते हैं, और अपनी अचिंत्य शक्ति से परमात्मा और ब्रह्म के रूप में पूरी जगह व्याप्त हैं। परमात्मा के रूप में वो भौतिक जगत में रहते हैं। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक मेला होता है, जब तक मेला होता है तब तक गवर्नमेंट के द्वारा किसी ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाता है उस मेले की निगरानी करने के लिए। उसी प्रकार से भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में व्यक्त करते हैं जब तक ये भौतिक जगत रहता है। तो ये परमात्मा की अभिव्यक्ति जो है ये शाश्वत नहीं है। तो हम लोग इसीलिए परमात्मा की जो अनुभूति है ये भी परम स्थान को प्राप्त नहीं कराती। जब तक व्यक्ति भगवान पर ध्यान नहीं करता, भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं करता, भगवान के लिए सेवा नहीं करता है, तो उसके भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए वो असंभव रहेगा उसके लिए। तो इसलिए व्यक्ति को सीधे ही कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसका भगवान के धाम में जाना सुनिश्चित हो जाए। और इस बात को लास्ट सेक्शन में बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि भगवान को जानने का अर्थ क्या है, यानी भगवान की लीलाएं किस प्रकार से दिव्य हैं, जब भगवान आते हैं तो कैसे कैसे लीलाएं करते हैं और क्यों करते हैं, उनको तत्व में व्यक्ति जब समझता है भगवद्गीता के द्वारा, भागवतम को सुनने के द्वारा, कृष्णा बुक पढ़ने के द्वारा, तो फिर व्यक्ति बड़ी आसानी से मुक्त हो जाता है। अन्यथा लोग अगर कृष्ण के बारे में भ्रांतियां प्रस्तुत करते रहेंगे कि कृष्ण तो एक समान गृहस्थ थे, ऐसे थे वैसे थे, एक महापुरुष थे, तो ऐसा व्यक्ति कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण की भगवत्ता को ठीक ठीक जो व्यक्ति समझ लेता है तो भगवान कह रहे हैं वो निश्चित रूप से उनके पास आएगा। तो मानव जीवन में यही करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को संयम करके लगातार भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहिए और उनका नाम जप करना चाहिए, ताकि जो हम बात सुन रहे हैं उनको समझ में आए, और इस प्रकार से हम भगवान की बातों को समझ कर उनका नाम जप करके उनका प्रसाद खा करके बड़ी आसानी से भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा।